चाहत को बेहोश हुए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। वो हॉस्पिटल में थी, इसलिए डॉक्टर को फौरन बुला लिया था। इस वक्त वो एक मेडिकल रूम में थी जहां उसे ड्रिप लगी हुई थी। आहान उसके पास बैठा था, उसने उसके हाथ को पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से वो उसके बालों को लगातार सहला रहा था। आहान ने मन ही मन चाहत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा डॉल, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अगर मैं भगवान होता तो इसी वक्त तुम्हारी मॉम को वापस जिंदा कर देता। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। तुमने अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें सही हैं, और अब वो रुक गया। अब तुमने उसे भी खो दिया जिसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं था। बाहर श्रद्धा पार्वती जी को संभाल रही थी, जो बस रोए ही जा रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी होगा, निशा जी को अचानक कार्डियक अटैक आ जाएगा। श्रद्धा ने पार्वती जी के कंधे को सहलाते हुए कहा, संभालिए नानी, इस दुख की घड़ी में आपको ही सबको संभालना है, क्योंकि आप सबसे बड़ी हैं। अगर आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो बाकी सब लोगों का क्या होगा, चाहत का क्या होगा? आपको पता है वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी, हमें उसे संभालना है। पार्वती जी ने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा, पता नहीं हमने भगवान का ऐसा क्या बुरा किया था जो वो हमें ये सब दिन दिखा रहा है। पहले वो बीमार थी और हम उसका इलाज नहीं करवा पा रहे थे। अब उसका इलाज होने लगा था तो भगवान ने उसे हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। ये कहते कहते वो फिर से रोने लगी। आयुष डॉक्टर के साथ था और सारी फॉर्मैलिटी पूरी कर रहा था ताकि निशा जी की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया जा सके। सब हो गया था, बस अब इसके ऊपर चाहत के साइन बाकी थे। इसके बाद वो डेड बॉडी को ले जा सकते थे। आयुष ने वो फॉर्म लिया और चाहत के साइन के लिए उसके मेडिकल रूम की तरफ चला गया। आयुष ने धीरे से दरवाज़ा खोला। आहान ने उसकी तरफ देखा तो आयुष का उसका उदास चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसे लग रहा था कि आहान कभी भी रो देगा। आयुष आहान के पास आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, भाई यहाँ हम दोनों को मिलकर इस कंडीशन को संभालना है, इसलिए आप इस तरह से मायूस मत होइए। आहान ने चाहत के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, मैं बस इसके लिए परेशान हूँ। तुम नहीं जानती इसने अपनी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ झेली हैं। मैंने सोचा था अब इसे और परेशानियाँ नहीं झेलनी पड़ेंगी और इसकी लाइफ में जो भी होगा वो सब अच्छा होगा, मगर इसे अब अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख का सामना करना पड़ गया। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, शी कैन नॉट हैंडल दिस पेन। ये इसके लिए इसकी बर्दाश्त की हद से बाहर है। काश मेरे पास कोई जादुई छड़ी होती, मैं सब सही कर देता। वो दोनों बात कर रहे थे तभी चाहत को होश आया। होश आते ही वो उठी और अनएक्सपेक्टेड बिहेव करते हुए बोली, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है, हमें उनका अंतिम संस्कार भी तो करना है। चलिए तैयारियाँ करते हैं, मैं खुद अपनी मॉम की डेड बॉडी को अपने हाथों से सजाऊंगी। मुझे आखिरी बार उन्हें सजाने का मौका मिलेगा, मैं किसी तरह की कमी नहीं छोड़ूंगी। आप लोगों को तो अब तक आधे काम निपटा देने चाहिए थे, मगर आप दोनों मेरे आसपास आकर बैठ गए। आहान और आयुष दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों को इस बात की उम्मीद नहीं थी चाहत कुछ ऐसा बिहेव करेगी। आहान ने चाहत का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम ठीक हो ना? मैं जानता हूँ मुझे ये सवाल तुमसे नहीं करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी यहाँ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन तुम जो भी बिहेव कर रही हो उसकी वजह से मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ अगर मेरे मॉम की डेथ हो गई तो? इस दुनिया में जो भी आए हैं उन्हें एक ना एक दिन तो मरना ही होता है। चलिए जो भी काम है उन्हें पूरा करते हैं, हम सच्चाई से छुप नहीं सकते, ना ही इसे झुठला सकते हैं, चाहत ने सामान्य तरीके से कहा। आयुष ने अपने पास जो फॉर्म था उसकी तरफ देखा और उसे चाहत की तरफ करते हुए कहा, हाँ मगर उससे पहले आपको इस पर साइन करने होंगे। अगर डेड बॉडी को यहाँ से लेकर जाना है तो डॉक्टर को आपकी परमिशन चाहिए। उसने फॉर्म चाहत को बगड़ा दिया। चाहत ने फॉर्म लिया और फिर उसे एक नज़र अपनी आंखों से देखने के बाद कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी साइन कर देती हूँ, लाओ मुझे एक पेन दो। चाहत ने इधर उधर देखा तो वहाँ एक नोटपैड रखा था, उसके पास पेन रखा था। चाहत ने उसे उठाया और फिर जल्दी जल्दी साइन किया। उसने आयुष को फॉर्म को वापस देते हुए कहा, बस हो गया, अब कुछ और भी करना बाकी है क्या? अगर है तो बता दो, उसे भी पूरा कर देती हूँ। जब मेरी मॉम जिंदा थी तब मैंने उनका बहुत ध्यान रखा था, उनकी डेथ के बाद में भी मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी और कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। उसने आहान की तरफ देखा जो उसे सीरियस नज़रों से देख रहा था। वो आहान से बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आहान को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। चाहत ने कह दिया था वो ठीक है, मगर उसे इस बात पर शक हो रहा था चाहत बिल्कुल ठीक है। चाहत भी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक हो। उसने चाहत के कंधे पर हाथ रखा और खुद की तसल्ली के लिए उसे पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? चाहत ने उसकी तरफ आधी मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ देखा और कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं परेशान हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ। फिर उसने आयुष की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है मैं ठीक नहीं? आयुष ने आहान की तरफ देखा और फिर चाहत की तरफ देखकर कंधे उठाकर कहा, लग तो यही रहा है आप ठीक हो, पर हाँ यकीन करना मुश्किल है आप ठीक है। आयुष ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा और फिर फॉर्म लेकर यहाँ से वापस चला गया। जैसे ही आयुष यहाँ से गया, चाहत अपनी जगह से खड़ी होने लगी और बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे काफी सारी तैयारी करनी है। घर पर जाकर सभी लोगों को मम्मा की डेथ के बारे में बताना है। रिश्तेदारों में कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, मगर फिर भी काफी सारे जान पहचान वाले हैं, उन सबको बुलाना पड़ेगा। शमशान घाट जाकर मॉम की डेड बेटी को जलाने का भी इंतजाम करना है। कितने सारे काम है, सब मुझे अकेले करने पड़ेंगे। चाहत जाने लगी तो आहान उसके सामने आ गया। उसने उसके कंधों पर हाथ रखा। डॉल, रुको, गहरी सांस लो और खुद को शांत करो। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें खुद को संभालना होगा और होश से काम लेना होगा। तुम इस तरह की बेवकूफियां नहीं कर सकती। चलो गहरी सांस लो और आंखें बंद करके 10 तक उल्टी गिनती गिनो। चाहत ने उसके दोनों हाथों को अपने कंधों से हटाया। ये तुम क्या कह रहे हो आहान, मुझे ऐसे अजीब से काम करने के लिए क्यों कह रहे हो? मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अचानक चाहत की आंखों में आंसू आ गए। वो रूठे गले से बोली, क्या मैं तुम्हें ठीक नहीं लग रही? बोलो, क्या तुम्हें मेरे चेहरे से ऐसा लग रहा है मैं अपने मॉम को लेकर दुखी हूँ? ये कहते कहते वो रोने लगी। क्या सच में ऐसा है? आहान ने तुरंत चाहत को अपने सीने से लगा लिया। चाहत और भी ज्यादा जोर से रोने लगी। आहान ने उसे सहलाते हुए कहा, डॉल, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ जाता हूँ तुम अंदर से क्या फील कर रही हो। इस तरह से हम जबरदस्ती अपने दुख को नहीं छुपा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें और तकलीफ होती है। वो उसकी पीठ को सहला रहा था। चाहत रोते हुए बोली, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बुरा किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ थी और वही अब मेरी जिंदगी में नहीं रही। मैं वो फिर से खामोश हो गई और उसका रोना भी रुक गया।
आहान ने उसे हटाया और उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चुप्पी छाई हुई थी। आहान ने उसे झकझोड़ते हुए कहा, मैं क्या चाहत, तुम चुप क्यों हो गई? आगे बताओ, क्या कह रही थी? पर चाहत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके आंसू भी उसकी आंखों में ही रुक गए थे। चाहत को अपनी मॉम की डेथ का इतना बड़ा सदमा लगा था कि उसे खुद अब समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट कर रही है। उसका बिहेवियर पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड हो गया था। आयुष ने फॉर्म जाकर डॉक्टर को जमा करवा दिया। इसके बाद डॉक्टर ने डेड बॉडी को ले जाने की परमिशन दे दी। वो बाकी की फॉर्मैलिटी भी पूरी करने लगा। चाहत को देखने के लिए आहान ने एक डॉक्टर को बुला लिया था जो उसका चेकअप कर रहा था। डॉक्टर ने उसे देखने के बाद कहा, लगता है जब इन्हें अपनी मॉम की डेथ के बारे में पता चला तब इन्हें इसका गहरा सदमा लगा। इतना गहरा सदमा कि अब ये अंदर ही अंदर पूरी तरह से घुट रही हैं। ये इस चीज़ को मानने के लिए खुद से बहस कर रही हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब अचानक से ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ हो जाए जिसे हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, खासकर ऐसी चीज़ जो बुरी हो, जैसे कि किसी को अचानक से खो देना। ऐसे मामलों में इसका और भी बुरा असर दिखता है जिसमें हम किसी को ज़्यादा चाहते हैं और उसे ही खो दें। आपको इसका ध्यान रखना होगा। अभी के लिए ये होश में नहीं है, मगर जब ये होश में आएंगी तब वापस अलग बिहेव करेंगी। वहाँ आपको इन्हें संभालना होगा और ये जो भी कहती हैं वो करना होगा। ऐसा 7 से 15 दिनों तक रहेगा, इसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर ये कहकर चला गया। आहान ने चाहत को देखा और कहा, डॉल प्लीज़ ऐसा मत करो, खुद को अंदर ही अंदर तकलीफ मत दो। ये कितनी पेनफुल होती है मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। न जाने मैंने कितने साल इस तकलीफ में गुजारे हैं, तुम ऐसी कंडीशन में मत फंसो। आहान उसके लिए परेशान हो रहा था। वो इस सिचुएशन को न जाने कब से झेल रहा था और अब चाहत भी उसी स्थिति से लड़ रही थी। चाहत को देखकर आहान को उस पर तरस आ रहा था।